اسلام ہو جائے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم عطا فرمائے اور اس نور سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے. ناظرین کرام, اس پروگرام میں بطور خاص کسی ایک سورت مبارکہ کا تعارف پیش کیا جاتا ہے, اس کا کچھ پس منظر اور اس کے دیگر مضامین پر گفتگو کی جاتی ہے. سورہ صافات پر گزشتہ پروگرام میں کچھ اس کا تعارف اور اس کے مضامین پر گفتگو کی تھی, آج بھی انشاءاللہ اسی سورہ مبارکہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں گے. سورہ صافات یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, یعنی مکی سورت مبارکہ ہے, اور مکی سورتوں کے اندر بکثرت اللہ پاک کی توحید, اللہ پاک کے نبیوں کے حوالے سے اور پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور دنیا سے جانا, حشر کو اٹھائے جانا, یہ سب کچھ مکی صورتوں میں اوورال اور عمومی مضامین یہ بیان کیے گئے. سورہ صافات کے اندر بھی اسی طرح کے مضامین موجود ہیں کہ جن میں اللہ پاک نے ان صف بنانے والوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے, یعنی جو صف بناتے ہیں, جس سے مراد ان فرشتوں کی صفوں کو بھی لیا گیا ہے, جس سے مراد نمازیوں کی صفوں کو بھی, عبادت گزاروں کی صفوں کو بھی لیا گیا, اور اس سے مراد ان لوگوں کی صفوں کو بھی مراد لیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے, وہ کلمہ حق بلند کرنے کے لیے صف بنا کر وہ اپنی جانوں کی گویا کہ قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں, اور دین اور اعلی کلمۃ الحق کے لیے وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں, تو ان وہ بھی مراد اس سے لیے گئے ہیں. بہرحال اس سورہ مبارکہ کے اندر انبیاء کا ذکر بھی موجود ہے, نبیوں کا ذکر ہے, جن میں حضرت یونس علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کا بھی ذکر اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے. تو بڑھتے ہیں کچھ اس کے مضامین کی طرف اور چند آیات مبارکہ کی طرف. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق, آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اور مشرقوں کا مالک ہے. تو یہاں بیان فرما دیا کہ اللہ پاک تو زمین کا بھی مالک, آسمان کا بھی مالک اور جو کچھ اس میں ہے سب, تمام یعنی کائنات کی ہر ہر حد, ان سب کا اللہ مالک ہے, ان کا اللہ مالک ہے, تو اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے, اسی کی عبادت کی جائے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. جو رب کے علاوہ کسی اور کو معاذ اللہ عبادت کے لائق سمجھے یا خدا سمجھے تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور ایسا شخص مشرک کہلاتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مانتا ہو, الہ مانتا ہو. قرآن پاک کے اندر اگر ہم یہ غور کریں تو کئی مشارق فرمایا, یعنی سورج طلوع ہونے کی جگہیں, یہ جمع کا صیغہ ہے, اور کہیں تثنیہ کے صیغے کے ساتھ ہیں, جیسے رب المشرقین و رب المغربین, یعنی دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. علماء کرام نے تفسیر میں یہ بیان کیا کہ چونکہ سال کے 360 دن ہے اور یہ رب کی قدرت ہے سبحان اللہ کہ جو مشرق یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہیں وہ ہر دن نہیں ہے, یعنی کچھ ہٹ کر, یعنی اس میں فرق ہے. اسی طرح جو مغرب غروب ہونے کی جو جگہ ہیں تو وہ بھی مختلف ہیں. تو فرمایا گویا کہ سال کے 360 دن سورج ایک الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور الگ جگہ غروب ہوتا ہے, یعنی کچھ فرق رہتا ہے, تو اس لیے وہ تمام کے اعتبار سے مشارق اور مغارب اسے فرمایا گیا. اور جہاں تثنیہ کا فرمایا گیا, رب المشرقین, دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب, تو یہاں فرمایا کہ سردی اور گرمی کے اعتبار سے, یہ کہ سردی کی ایک جگہ سورج طلوع ہونے کی اور ایک ہے گرمی کی, تو یہاں پر ان دو موسم کے اعتبار سے ہیں. اور جہاں صرف ایک ہی فرمایا, رب المشرق والمغرب, یعنی جہاں پہ صرف واحد ہو, ایک ہو, تو اس سے مراد سال کے اعتبار کیا, تو ये तावील बयान किए, कहीं जमा का सीगा है, कहीं तस्निया का है, कहीं वाहिद का है। ये भी रब की कुदरत की एक अलामतें हैं कि कोई है जो इस कायनात का निजाम चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। अगली आयात की तरफ बढ़ते हैं। क्यामत का जिक्र और उसकी कुछ निशानियां बयान की गई। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फइन्नमा हिया जजरतुन वाहिदा फइदा हुम यनजुरून वकालू या वैलना हादा यौमुद्दीन हादा यौमुल फसल लदी कुन्तुम बिही तुकज्जिबून। तो वो एक झिड़क ही होगी, तो जब भी वो देखने लगेंगे, एक ऐसी झड़क होगी, तो वो क्या देखने लगेंगे और कहेंगे हाय हमारी खराबी। तो फिर उन्हें कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ये बदले का दिन है, ये वो फैसले का दिन है जिसे तुम झुठलाते थे, यानी ये इंसाफ का दिन है। क्यामत को यू कहा गया हादा यौमुल फसल, ये बदले का दिन है, जो तुमने किया अब उसका तुम्हें फल या उसकी सजा ये तुम्हें मिलेगी। अच्छा किया था तो अच्छा है, बुरा किया था तो ये तुम्हारे लिए सजाएं हैं। कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे क्यामत के दिन के मुख्तलिफ नाम बयान किए गए। क्यामत का दिन करीब है क्योंकि हर वो चीज जिसका आना यकीनी है तो वो करीब है। इस एतबार से कुरान में यौमुल आजिफा ये भी कहा गया, यानी करीब आने वाला दिन, ये भी क्यामत के दिन को कहा गया। यौमुल फसल ये भी क्यामत के दिन को कहा गया। दुनिया में क्यामत के अजाब की वईद सुनाई गई है, तो इस एतबार से यौमुल वईद ये भी क्यामत के नाम है। उस दिन सबको अल्लाह पाक दोबारा जिंदा फरमाएगा, दोबारा जिंदा फरमाएगा, उठाएगा, तो इस एतबार से यौमुल बाद उठाने का दिन इसको कहा गया। उस दिन लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे तो यौमुल खुरूज भी कहा गया, निकलने का दिन वो भी इसको कहा गया। उस दिन अल्लाह पाक सब लोगों को जमा फरमाएगा, यानी उनको उठाया जाएगा, उनको एक जगह जमा किया जाएगा, तो यौमुल जमा यौमुल हश्र ये भी क्यामत के दिन का नाम है। यानी जमा होने और इकट्ठा होने इसका दिन है ये। आगे ये फरमाया गया, उस दिन तमाम मखलूक हाजिर होगी, इसलिए यौम मशहूद ये भी इसे फरमाया गया, यौम मशहूद कहा गया, यानी हाजिरी होने का दिन। तमाम मखलूक के आमाल का हिसाब होगा, तो इस एतबार से यौमुल हिसाब क्यामत को ये हिसाब का दिन भी फरमाया गया, और उस दिन बदला दिया जाएगा और इंसाफ किया जाएगा, तो इस एतबार से यौमुद्दीन मालिक यौमुद्दीन रोजे जजा का मालिक, तो क्यामत को यौमुद्दीन भी कहा गया। उस दिन दहशत हिसाब जजा ये सब चीजें बिल्कुल वाज खुलकर लोगों के ऊपर सामने आ जाएंगी, तो इस एतबार से यौमिन अवीम कहा गया, बहुत बड़ा दिन इसे फरमाया गया। उस दिन लोगों में फैसला होगा या फासला होगा, यानी जुदाई हो जाएगी, तो इस एतबार से यौमुल फसल भी इसे कहा गया, यौमुल फसल भी फरमाया गया। क्यामत का दिन चूंकि कुफार के लिए असलन कोई भलाई नहीं होगी, कोई भलाई क्यामत के दिन तो कुछ नहीं होगा ना, कुफार के लिए तो कोई नहीं, उनको कहा गया यौमिन अकीम यानी बांझ दिन, इस एतबार से उनको ये क्यामत का एक नाम ये भी कुरान पाक में बयान हुआ। और कुफार पर यह दिन बड़ा सख्त भी होगा, तो इस एतबार से यौमुन असीर सख्त दिन ये भी इसी क्यामत के दिन का एक नाम है। मुजरिम अजाब में घेर लिए जाएंगे, तो इसको यौम मुहीत कहा गया, घेर लेने वाला दिन, घेर लेने वाला दिन। कुफार और मुशरिकीन के लिए दर्दनाक अजाब होगा, यौमिन अलीम ये इसे कहा गया, और सख्ती के एतबार से इसे यौमिन कबीर कुरान पाक में जो फरमाया गया कि ये उस दिन बड़ी सख्ती वाला दिन होगा, बड़ी सख्ती वाला दिन होगा। कुछ लोग नादिम होंगे, गम में होंगे, जो नेक भी होंगे वो भी गम में होंगे, हसरत वाली उनकी निगाहें होंगी। क्यों? क्यों कहेंगे कुछ और अमल कर लेते तो आज ये हसरत ना होती। कुफार हसरत करेंगे कि हम ईमान ले आते तो हमारा फायदा होता, ईमान वाले भी हसरत करेंगे कि दुनिया के अंदर ये टाइम ऐसा गुजर गया, काश ऐसा ना गुजरता, इसमें हम कोई इबादत कर लेते। तो इस एतबार से कियामत को यौमुल हसरती कहा जाता है, हसरत का दिन, हसरत का दिन। कियामत का दिन वो दिन होगा कि जिसमें फरमाया रूहें अजसाम ये मिलेंगे, जमीन वाले और आसमान वाले मिलेंगे, गैर खुदा की इबादत करने वाले और उनके माबूद उन्हें मिलेंगे, यानी जिसको वो पूजते थे, जो इबादत करते थे, अमल करने वाले और आमाल ये मिलेंगे, पहले और आखिरी ये लोग मिलेंगे, जालिम और मजलूम वो भी मिलेंगे, ये आपस में सब मिलेंगे। तो यूं इसका नाम यौमुत तलाक यानी मिलने का दिन, इस एतबार से इसको मिलने का दिन का, और क्यामत के दिन चूंकि मुख्तलिफ एतबार से जन्नतियों की जीत होगी, कुफार की शिकस्त होगी, और इसलिए से यौमुत तगाबुन यानी हार जाहिर होने का दिन, हार जाहिर होने का दिन ये भी इसे कहा गया। ये नाज़रीन किराम क़यामत की उस दहशत और वहशत को बयान करने के लिए, आपने देखा ये कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर भी, फिर हदीसों में और बयान किए गए कि क़यामत के इतने नाम, किसी चीज की अजमत को जब बयान किया जाता है उसके मुख्तलिफ नाम होते, उसकी कसरत से नाम होते गए, तो क़यामत का दिन भी अजमत वाला दिन होगा, एक बड़ा दिन होगा, हिसाब किताब का दिन होगा। अल्लाह अकबर। और हदीस पाक में क़यामत के दिन बंदा अपनी जगह से उस वक्त तक ना हिल सकेगा जब तक चार बातें ना पूछ ली, उम्र किस काम में गुजरी, इल्म पर क्या अमल किया, कहाँ से उसने माल कमाया, कहाँ खर्च किया, और उसका जिस्म जो उसको मिला है उसको किस काम में लाया। ये जिस्म जो हमारे पास है रब ताला की तरफ से एक नेमत भी है, एक अतिया है, एक अमानत है, तो जिस्मानी नेमत के बारे में पूछा जाएगा, माल की नेमत के बारे में पूछा जाएगा, जिंदगी की नेमत के हवाले से पूछा जाएगा, फरमा उस वक्त तक कोई भी नहीं हिल सकेगा, ये हर एक को। सिर्फ ये नहीं कि माल कहां से कमाया, ये नहीं कहां खर्च भी किया, बाज़ूकात आदमी कमाता हलाल है खर्च हराम जगह पे करता है, गुनाह के कामों पे करता है, वो भी पूछगछ होगी, और फिर वो जो हराम ही कमाए और हराम ही खर्च करे और पूछगछ। तो इसलिए कोई ये ना कहे कि भाई हलाल कमाया जहां मर्जी खर्च करूं, नहीं, अगले खर्च करने की जगह भी अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी कि हमने खर्च कहाँ करना है, अच्छे कामों में करो सवाब है, जजा है, इनाम है, बुरे कामों में करोगे इसकी गिरफ्त है, पकड़ है। आगे मजीद कुछ बढ़ते हैं और मजीद इसी सूरह मुबारक के कुछ मजामीन पर गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन किराम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बड़ी ही एक यादगार कुर्बानी है और वो है बेटे की कुर्बानी। आप पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, यानी दुआ मांगते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ने एक औलाद अता फरमा, रब ने इन्हें बेटा अता फरमाया। अब जब बेटा मिला हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो फिर इन पर एक और भी इनको आजमाइश की गई, मक्का मुकरमा आबाद हुआ, तो वो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानी थी कि जो मक्का मुकरमा की आबादी का सबब बना, वहां ने अहल को छोड़ा, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ा, और वहीं से फिर बीबी हाजरा वो पानी तलाश करते हुए जो दौड़ी थी, तो जो एक चश्मा जाहिर हुआ, जमजम का वो चश्मा जाहिर हुआ, सफा मरवा, इसको हमारे लिए शायरुल्लाह कहा, हुज्जाज किराम उस याद में वहां पे सही करते हैं सफा मरवा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, चूंकि आप जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा होता है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो अभी बचपन ही है, अभी कोई जवानी वाली उम्र नहीं थी, लेकिन इसकी मुख्तलिफ उम्रें बयान की गई, 7 साल भी बयान की, 8 साल, तो ये उम्र है आप 7 साल से लेकर आप 11-12 साल तक, उमूमन बच्चों की क्या कैफियत होती, क्या उम्र होती, हर एक अंदाजा अच्छा लगा सकता है। आप अली सलाम को जो ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से आपको दिखाया गया, अम्बिया को ख्वाब जो है वो भी वही का एक तरीका है, यानी वही है वो। अब कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब ये ख्वाब आया, तो फिर क्या मामला हुआ, फलम्मा बलगा माहु साया कौला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर मादा तरा कौला या अबत्ति फअल मा तुमर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिन अस्साबिरीन। फिर जब वो उसके साथ कोशिश करने के काबिल उम्र को पहुंच गया, तो इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, अब तू देख तेरी क्या राय, तुम क्या कहते हो। बेटे ने कहा, ऐ मेरे बाप, आप वही करें जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है, इंशाअल्लाह अन करीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, सब्र करने वालों में से पाएंगे। आप जरा अंदाजा कीजिए नाज़रीन किराम के अभी वो उस उम्र तक पहुंचे कि आपके साथ चलने फिरने, कुछ चीज उठाकर पकड़ाने रखने कुछ, यानी साथ मुआवनत की उम्र तक पहुंचे, तो अब बाप ने बेटे से कहा है कि मैंने ये ख्वाब देखा है, तो बेटा कितना सुभान अल्लाह कहते हैं कि या अब तिफअल मा तुमर, ए बजान आप कर गुजरिए जो आपको हुक्म दिया गया है। सताजिदुनी इंशा अल्लाह मिन सबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, सब्र करूंगा मैं। शायर ने कहा है, ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। सुबहान अल्लाह, या ये जवाब जब आपको मिला तो फिर आप तैयार हो गए इनको ज़बह के लिए, और अपने घर से पूरी तैयारी करके आप निकलते हैं। फिर एक तवील वो वाकया है, मैं उसको मुख्तसर करता हूँ। शैतान ने ख्याल पैदा किया इस्माइल अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, बीबी हाजरा को, हर जगह से वो मगमूम ही रहा और मरदूद ही रहा। उन्होंने कहा जब रब का हुक्म है तो फिर कितने ही इस्माइल क्यों ना हो, सब कुर्बान हो जाएंगे। सुबहान अल्लाह। फलम्मा असलमा वतल्लहू लिलजबीन, तो जब उन दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन झुका दी और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेशानी को बल यानी नीचे किया ताकि बाप की मोहब्बत में कहीं इसमें ये चीज आड़े ना आ जाए, और ये फितरी एक मोहब्बत का तकाजा है, कहीं अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में कहीं ये रुकावट ना हो। तो ये लिटा भी दिया, और बेटे ने कहा मुझे बांध भी दें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तकलीफ की वजह से आप ये छोड़ दें, आप मुझे बांध भी दें, अल्लाह पाक का जो हुक्म है आप कर गुजरिए। सुबहान अल्लाह। आप खुद फरमाए बेटा कि आप इस मामले में मेरी कितनी मदद कर रहे हैं, यानी खुद तैयार हैं कि रब का हुक्म है तो मैं भी कुर्बान हो जाता हूं। अब ये लेटा दिए गए, छुरी चल रही है, अल्लाहु अकबर, और अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील अमीन को जन्नत से वो मेंढा ले जाने का जो हुक्म इरशाद फरमाया, और वो मेंढा आया और यूं उनके नीचे मेंढा आ जाता है और वो छुरी चलती है तो उससे वो मेंढा जबा होता है और बेटे खड़े हुए, बेटे खड़े हैं। सुबहान अल्लाह। और ये जो तकबीर तशरीक हम ये पढ़ते हैं, ये इन तीनों की तकबीरात थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। कुछ कलिमे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, कुछ कलिमात हजरत जिब्रील के, कुछ कलिमात हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के, तीनों कैसे कलिमात थे ये मजमुआ, ये आज हम बकरईद के मौके पर तकबीरात तशरीक के तौर पर इन कलिमात को, इन तस्बीहात को, इन तकबीरात को हम ये पढ़ते हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वना दैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दकत रुया इन्ना कदालिक नजजिल मुहसिनीन इन्ना हादा लहुल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़बहिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहिम कदालिक नजजिल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। हमने उसे निदा फरमाई, ए इब्राहिम बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को ऐसे ही सिला देते हैं, बेशक ये जरूर खुली आजमाइश थी, और हमने इस्माइल के फिदिये में एक बड़ा जबीहा दे दिया, और हमने बाद वालों में उसकी तारीफ बाकी रखी, इब्राहिम पर सलाम हो। हम नेकी करने वालों को ऐसे ही सिला देते हैं, बेशक वो हमारे आला दर्जे के कामिल ईमान वाले बंदों में से है, आला दर्जे के कामिल ईमान वाले बंदों में से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये खुली जो आजमाइश कहा गई कि आप कितनी आजमाइशों में, रब के नामों पर आप हर हर आजमाइश में कामयाब हुए। जब नमरूद ने आपकी जान को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालना चाह, आपने वो भी कुर्बानी दी, जिब्रील भी आ गए, ऐ इब्राहिम अल्लाह की बारगाह में कुछ कहना है? नहीं, जिस रब के नाम पे जा रहा हूं मेरा रब मेरे हाल से वाकिफ है, मेरा रब जानता है। अल्लाहु अकबर। आपने ये भी नहीं कहा, सवाल भी नहीं किया, फरमाया जिसके नाम पे जा रहा हूं मेरे सवाल मेरी हाजत सब कुछ वही जानता है। तो अल्लाह पाक ने जो हुक्म इरशाद फरमाया उस आग को, कुलना या नारुकूनी बर्दं व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा इब्राहिम पर, इब्राहिम पर सलामती वाली हो जा। ठंडी भी कहा, सलामती भी कहा, ताकि इतनी ठंड भी ना हो, अगर सिर्फ ठंडा ही कहा जाता तो इतनी ठंडी हो जाती कि उसकी ठंडक ही नुकसान पहुंचाती। सर्दी का मौसम हो तो बहुत ठंड हो जाए तो जाहिर है ठंड भी आदमी को नुकसान पहुंचाती है, जब तक कोई आदमी गर्म चीजें इस्तेमाल ना करे, लिहाफ ना ले, कुछ ऐसी चीजें ना ले। इसी तरह एसी की कूलिंग तेज हो जाए तो वो भी ठंड भी, कूलिंग भी नुकसान पहुंचाती है। अल्लाह पाक ने फरमाया ठंडी भी हो और सलामती वाली हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वो फूलों का बाग बन गई, वो आग वो फूलों का बाग बन। तो ये बड़ी आजमाइश थी अपनी जान की। और फिर उसके बाद आप जब ये मामला हुआ और आप नमरूद के उस इन चालों से भी, जो भी उसने आग मंजनीक के में डालकर आपको आग में डाला, तो आप जिंदा बचे और सही सलामत आ गए। फिर आपने वहां से हिजरत की, और सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की। जब आपकी ये हिजरत थी तो फिर उसके बाद आपने दुआएं मांगी अल्लाह की बारगाह, या अल्लाह बेटा अता फरमा, बेटा अता फरमा। अब इतनी दुआओं के बाद बेटा मिला, अल्लाह अकबर। और फिर ये भी आजमाइश है कि बेटा ज़बह कर रहे हैं। याद रखें, आम आदमी कोई नहीं ये कर सकता। आज किसी को ख्वाब आए बेटा ज़बह कर रहा है, तो उसको थोड़ी कहा जाएगा कि तुम भी ऐसा करो। नहीं, वो कर ही नहीं सकता, जायज ही नहीं उसके लिए। ये तो अल्लाह के नबी थे, और नबी का ख्वाब वो वही की एक सूरत है अल्लाह की तरफ से। मेरे और आपके ख्वाब में शैतान का अमल दखल होता है, चाहे अच्छा ख्वाब बुरा ख्वाब कुछ, चाहे जैसा भी ख्वाब हो। और अच्छे ख्वाब, जी हाँ, उनको मुबशरात फरमाया गया, वो खुशखबरियां हैं। मगर कई ख्वाब हमारे वो थे, शैतान का अमल दखल मुमकिन है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे देखा हक सच देखा, और मेरे मेरी सूरत शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। क्या किसी और की सूरत इख्तियार कर सकता है? किसी और वो चाहे कि वालदेन की सूरत में भी आ सकता है, जी हाँ, किसी नेक बंदे की सूरत में भी आ सकता है और आकर कहे कि ये काम करो। तो इसलिए मेरा और आपका ख्वाब वो अथेंटिक दलील नहीं, नबी का ख्वाब वो वही की एक सूरत। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये मामला फरमाया। नाज़रीन इकराम, सूरह सोफ़ात के हवाले से कुछ खुलासा ये अर्ज किया है। अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद फुरकान हमीद का ये फहम अता फरमाए, इल्म अता फरमाए, और नूरे कुरान से मेरे और आपके सीनों को रोशन मुनव्वर फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
यही है आरज़ू ताली में कुरआन आम हो जाए, हर के परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम।